السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان نے کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے وینٹیلیٹرز بھیجنے کی درخواست کی ہے, جو انہوں نے منظور کر لی ہے. وائٹ ہاؤس میں اس بیماری سے نمٹنے کی کوششوں پر غور کے لیے ہونے والی بریفنگ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ کئی عالمی لیڈروں نے ان سے وینٹیلیٹرز کی شدید ضرورت کا اظہار کیا ہے اور واشنگٹن نے انہیں اس کی فراہمی کا یقین دلایا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھی ان سے بات کی ہے اور ہم بہت خوشی انہیں وینٹیلیٹرز فراہم کریں گے. پاکستان کے اخبار ڈان کی اطلاع کے مطابق عالمی بینک کا کہنا ہے کہ 2020 میں پاکستان میں ترسیلات میں کمی کا تخمینہ لگایا گیا ہے. بینک کا کہنا ہے کہ یہ ترسیلات 23% کم ہو کر 17 ارب ڈالر رہ جائیں گی, جبکہ 2019 میں یہ 22.5 ارب ڈالر تھیں. COVID-19 کی وبا کے باعث معاشی بحران نے یہ کمی کی ہے. بینک نے متنبہ کیا ہے کہ یہ بحران طویل اور گہرا ہو سکتا ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ کرونا کے حوالے سے اگلے 15 دن بہت اہم ہیں. بہتر ہے کہ عوام گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں اور احتیاط کریں. راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کرونا وبا کی وجہ سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں فوج کی تعیناتی کی گئی ہے. اس کے لیے فوج سیکیورٹی الاؤنس وصول نہیں کرے گی. میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صورتحال اب بھی قابو میں ہے, لیکن پاکستانیوں کو اجتماعی احتیاط کی ضرورت ہے. میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ پاکستان میں سول اور فوجی قیادت مل کر اس خطرے کا مقابلہ کر رہی ہے. پاک فوج کی جانب سے 3.5 لاکھ سے زائد راشن بیگز مستحقین کو پہنچائے جا رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ چینی امداد اور طبی سامان پاک بحریہ کے جہاز کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں. چین سے امدادی سامان کے 2 جہاز اور ڈاکٹرز کی ٹیم پاکستان پہنچی ہے. انہوں نے کہا کہ علماء کرام کا بھی اس پوری صورتحال میں کردار قابل تعریف رہا ہے, جبکہ میڈیا نے بھی اس دوران بھرپور کردار ادا کیا ہے. پاکستان فوج کے ترجمان نے الزام عائد کیا کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت میں کچھ عرصے میں اضافہ ہوا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جی ایچ کیو میں ہونے والے اجلاس میں بھارتی قیادت کے بیانات کا سخت نوٹس لیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ بھارت نے کورونا وائرس کے آغاز سے لے کر اب تک 406 مرتبہ ایل او سی کی خلاف ورزی کی ہے. بھارتی فوج میڈیا کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے. میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ کرونا ایک عالمی وبا ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے. اس وبا کو مذہب سے جوڑنے کی بھارتی کوشش ناکام ہوئی ہے. بھارت نے جعلی خبریں پھیلانے کی کوشش کی, جس کی دنیا نے مذمت کی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آرمی چیف نے تمام کور کمانڈرز کو بارڈرز اور ملکی سیکیورٹی پر چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے. وزیراعظم پاکستان عمران خان جمعرات کے روز مختلف ٹیلی ویژن کے ساتھ مل کر وزیراعظم امدادی فنڈ برائے کرونا قائم کے لیے احتیاط جمع کرنے میں مصروف رہے, جس میں دنیا بھر سے پاکستانیوں نے فون اور ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے احتیاط جمع کروائے. اعداد و شمار کے مطابق احساس ٹیلی تھون پروگرام کے تحت 2.76 ارب روپے سے زائد فنڈز جمع ہوئے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے موقع پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ مشکل وقت میں دعا کی طاقت کس قدر اہمیت رکھتی ہے. آج رمضان کے مقدس ماہ کے آغاز پر میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ ان مقدس لمحات میں عبادت کریں ان کی زندگی میں سکون آئے اور مذہب سے ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے. امریکہ کے مسلمان آج جمعے سے رمضان کا آغاز کر چکے ہیں. سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور مشرق وسطی کے کئی ملکوں میں جمعرات کو رمضان کا چاند نظر آ گیا, جس کے بعد جمعے کو پہلے روزے کا اعلان کر دیا گیا. ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان رمضان میں عبادت کے لیے سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں, لیکن اس بار کرونا وائرس کی وجہ سے اجتماعی عبادات سے منع کیا گیا ہے اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں بھی اجتماعات پر پابندی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی خصوصی نشریات میں
آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں اس وقت سبھی لوگ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ایک کمیونٹی ایسی ہے جو عام حالات کی نسبت اور بھی زیادہ مشکل میں ہے۔ یہ کمیونٹی ہے خواجہ سراؤں کی، جن کے روزگار کا زیادہ تر ذریعہ شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی تھیں جو اب بالکل بند ہو چکی ہیں۔ آج ہم آپ کو پاکستان میں خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم ای ہینڈز کی اس میٹنگ میں لے چلیں گے جو اس کے فاؤنڈر اور سی ای او نادر علی خان نے ٹرانسجنڈر ایسوسیشن آف ہزارہ کے ارکان کے ساتھ منعقد کی ہے، اور اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ وہ کرونا کی وبا کے دوران ان کے مسائل کو معلوم کریں اور ان کی مدد کا کوئی ذریعہ بن سکیں۔ تو چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم نادر علی خان صاحب۔ نادر، کچھ بتائیے پہلے تو اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں کہ یہ عام دنوں میں کیا کرتی ہے، اور اس کیا خصوصی طور پر کرونا بحران کے دوران آپ نے یہ میٹنگ بلائی ہے، یا یہ میٹنگ کا ارینجمنٹ کیا ہے، یا ویسے بھی آپ ٹرانسجنڈر کے لیے کام کرتے ہیں؟
تھینک یو سو مچ ریچ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں، ہماری جو ایک این جی او ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے پاکستان میں ایز این ٹرسٹ، اسلام آباد بیسڈ ہمارا آفس ہے۔ جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ہم لوگ اس کے کرونا کے علاوہ بھی کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ نہیں، تو آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس کہ ہم لوگ 2015 میں ہم نے یہ انیشیٹو لیا تھا، جسے ہم لوگوں نے 2017 میں رجسٹرڈ کیا تھا پاکستان میں، اور ہمارے تھرو آؤٹ پاکستان اراؤنڈ 15 اس ٹائم کرنٹ پروجیکٹس ہیں جو کہ ڈفرینٹ ایریاز میں اور ڈفرینٹ ریجنس میں پاکستان کے چل رہے ہیں۔ اٹس ناٹ لائک کہ ہم لوگ صرف ابھی اس ٹائم ہی کرونا میں ہی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یا ٹرانسجینڈرز کے ساتھ کر رہے ہیں، اس طرح اس کے علاوہ بھی ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، جس طرح کے ہمارے واٹر ہینڈ پمپس کے ہیں، واٹر ٹینکس کے ہیں جو سی پی تھل اور تھر ان ایریاز میں، اس کے علاوہ آرفن سپورٹس پروگرام ہے، پیشنٹ سپورٹس پروگرام ہے، اسٹوڈینٹس ایجوکیشن سپورٹ ہے جس میں اسکالرشپس وغیرہ، ویل چیئر پروگرام ہے، اس طرح کے 15 ہمارے ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں پروجیکٹ ہیں جو کائنڈلی ہم لوگ پیورلی انڈیویجلس ڈونرس کی فنڈنگ پہ ہم لوگ ان کو تھرو آؤٹ پاکستان رن کر رہے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے پوچھا ٹرانسجینڈرس کے ساتھ ہم لوگ کس صرف اس سچویشن میں کر رہے ہیں یا ویسے بھی، تو اس میں ہم لوگ صرف ابھی نہیں کر رہے، یہ ہم لوگ 2016 سے ہمارے ساتھ کچھ ٹرانس لیڈرس ہیں پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز سے جو کنیکٹڈ ہیں، جن کے ساتھ ہم لوگ مل کے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں۔ جسٹ لائک ہم لوگوں نے ہمارے رمضان ٹرائبس ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ ان کو انوالو کرتے ہیں، اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، لاہور اور ڈسٹرکٹ مانسرا میں ہم لوگ فرسٹ ٹائم ریچ آؤٹ ہوا ہے ہمارا یہاں پہ، ان کو ہم لوگ نے ریچ آؤٹ کیا کہ ہم یہاں پہ بھی جو سائیکل کمیونٹی ہے ان کو کریں، تو رمضان میں ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہماری ویل چیئرس کی جو ہوتی ہے ایکٹیویٹیز ہو گئی، ٹریننگس ہو گئی ہماری اس کمیونٹی کے لیے، اور اس طرح کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن ابھی اس سچویشن میں ہم لوگ اس کے علاوہ بھی راشن پیکس ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، اویئرنیس کمپینس ہماری چل رہی ہیں تھرو آؤٹ پاکستان، جس میں فیس ماسک، گلوز ہو گئے، ہینڈ سینیٹائزرز ہو گئے، یہ چیزیں ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، راشن پیکس جو ڈیلی ویجز فیملیز ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اسی کا ایک پارٹ بنا کے ایک انیشیٹو اسٹارٹ کیا جو ٹرانسجینڈرز کے لیے ہے، کیونکہ اس سچویشن میں ٹرانسجینڈرز بھی سب سے زیادہ ان کو ڈس پیدا ہوئی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے ابھی فرسٹ فیس اس کا اسٹارٹ کیا، جس میں ہم لوگ ڈسٹرکٹ مانسیرا کی جو ہزارہ ٹرانس کمیونٹی ہے، جو ان کی ایک ایسوسیشن ہے ہزارہ ٹرانس ایسوسیشن، اس کے ساتھ پارٹنر کیا ہے تاکہ ہم لوگ ہزارہ ریجن میں، خیبر پختونخوا کی ہزارہ ریجن میں جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے لیے کام کر سکیں۔ تو ڈیورنگ دس فرسٹ فیز ہم لوگ ڈسٹرکٹ مانسیرا میں کام کر رہے ہیں، یہاں پہ جو ان کی لیڈر ہیں نادرہ خان، ان کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے ابھی کچھ راشن ارینج کیا ہے جو کہ ان شاء اللہ کل سے ہماری ڈسٹریبیوشن اسٹارٹ ہو جائے گی، فرسٹ اراؤنڈ 110-150 پلس یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ مانسیرا میں ٹرانسجینڈرز ہیں، اور پھر ان شاء اللہ اس کے بعد ہم لوگ ہزارہ اور دوسرے ریجنس میں بھی اس چیز کو کنٹینیو کریں گے۔
تو یہ بتائیے کہ آپ نے یہ میٹنگ بلا لی اور اس میں آپ نے بتایا کہ 4-5 ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی، تو کوئی بندوبست ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ لوگوں کو ایک جگہ کرنا بھی نہیں اکٹھا، اس کے لیے آپ نے یہ بتائیے کہ اس میٹنگ کو خاص طور پر کس طرح آپ نے کرونا بحران سے بچاؤ کے انتظامات کے ساتھ کر رہے ہیں یہ میٹنگ؟
इसके लिए हमने प्रॉपर जो है सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर जो मेजरमेंट्स है, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लाइक हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहा हूँ, ग्लास मास्क, वो चीजें यूज करके हमने इस टाइम हम एक जो नादिरा खान है इनका ही इन्होंने एक रेंट आउट किया हुआ है यहाँ पे फ्लैट जहाँ पे ये रहती है, यहीं पे हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ख्याल रखते हैं वो ग्लव्स और मास्क पहन के हम लोगों ने ये मीटिंग वो की है ताकि सारी चीजें इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाए कि किसी एक की वजह से दूसरा इफेक्ट ना हो, और इस चीज में इस सिचुएशन में हम लोग प्रॉपर जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं उनको देख के आगे चल।
तो क्या ये तमाम जो ट्रांसजेंडर इस वक्त मौजूद हैं इनको इन्होंने अपना कोई ऐसी अलामत तो इनमें मौजूद नहीं थी जो कि ये पता लगा सकें कि इनको अल्लाह ना करे कोई वायरस का कोई शुबा भी है?
बिल्कुल ऐसी कोई भी, ये पहले हमने जो इनके लीडर्स हैं उन्हीं के थ्रू हम लोगों ने वेरीफाई भी करवाया था, कंफर्म किया था कि अगर इस तरह के कुछ हैं तो उनको यहाँ तो पहले टेस्ट करवा के कुछ इस तरह या उनको फिर इस मीटिंग्स में या हम कुछ और अरेंजमेंट्स करके उनके साथ मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो अभी यहाँ पे अवेलेबल है उनमें किसी में इस तरह की कोई भी इल्जामात या कोई ऐसी हो मौजूद नहीं है। दैट्स व्हाई हम लोगों ने ये मीटिंग ये चार पांच जो इनके हैं उनके साथ सारी मेजरमेंट्स देखते हुए वो रखा हुआ
ठीक
रखी है मीटिंग।
सही। तो और आप कोशिश करेंगे कि ये मीटिंग जल्दी से जल्द ख़त्म हो और राशन इनको तकसीम कर दिया जाए। तो मैं भी अब जल्दी से चाहूँगी कि जो आपकी मीटिंग में इस वक्त मौजूद हैं नादरा खान जो हज़ारा ट्रांसजेंडर एसोसिएशन की सदर हैं और गालिबन फाउंडर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम बाकी जो आपकी मीटिंग के की ख़वातीन हैं ट्रांसजेंडर उनसे बात करते हैं। जी जी नादरा खान से को माइक्रोफोन दीजिए, मोबाइल फोन दीजिए। तो अब तो सारे काम मोबाइल पर ही हो रहे हैं तो ये भी मोबाइल पर ही इंटरव्यू हो रहा है। तो जी वालेकुम सलाम नादरा खान, बताइए कि इस वक्त कोरोना बुहरान का जो कैफियत है और जब सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, आप भी अपने अपने फ्लैट्स में बंद हैं, तो फ्लैट्स में बंद रहने के लिए क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? इतनी देर तक घर में बंद रहना कोई आसान काम तो नहीं है, बड़े बड़े घरों तो चलो इंसान इधर चला गया उधर चला गया, तो आप बताइए कि कैसा गुजर रहा है ये लॉकडाउन और क्या मसाइल आपको पेश आ रहे हैं?
जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मसला तो ये है कि पहले हम लोग आइसोलेशन में होते हैं, अकेलेपन में और अकेले ही रहते हैं, तो अभी बाहर निकलना भी बंद हो गया है, तो वैसे हम लोग याद नहीं रहते, सिर्फ उस टाइम याद रहते हैं लोगों को कि जब इनके घर में कोई शादियां ब्याह होते हैं या कोई तकरीबात होती है, बच्चे की ब्याह पे जब उन्होंने फंक्शन देना होती है या हम लोगों को एक तमाशा देखना होता है, तो अभी कौन याद करता है हम लोगों को, और ये लोग मेरे पास आए, और बल्कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनमें से एक दो ने मेरी मदद की, बाकी गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने भी कोई मदद नहीं की, और हमारा काम ही जैसे रोजमर्रा के फंक्शन करके दिहाड़ी जिस तरह होती है उसमें हम लोग कराए वक्त खाने पीने की जरूरत पूरी करते, तो अभी मुझे ये टेंशन है कि आमदनी बंद हो गई हमारी, किराए कहाँ से आएंगे, खाना पीना तो चलो आ ही रहा है थोड़ा थोड़ा, मगर कोई अगर बीमार हो जाता है जैसे कोरोना के अलावा अगर कोई वैसे बीमार हो जाता है उसके लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे?
तो ये बड़े मसाइल हैं जी। और क्या
मसले? और मसले ये है कि जैसे सब लोग अलग अलग रहते हैं तकरीबन, तो मैंने तो काफी अरसे से यहाँ पे एप्लीकेशन दी भी सबको कि हम लोगों के लिए ऐसे होम होना चाहिए, ऐसे कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए जिसमें हम लोग रह सके जगह पे, एक तो हम लोग सिक्योर हो जाएंगे, जैसे कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं रहेगा, जैसे जो मसाइल चल रहे थे पिछले दिनों हमारे साथ, और एक ये कि किराए से बच जाएंगे हमारे लोग जो हैं, कहाँ से पूरे करेंगे जरूरत रहेगी अपनी।
सही। तो राशन वगैरह जो अभी तक आपको पहुंचा किसने पहुंचाया और क्या वो काफी है और कितने दिनों के लिए काफी है?
नहीं वो काफी नहीं है, राशन जो पहुंचा वो अपनी मदद आपके तहत ही पहुंचा, तकरीबन जिला मानसेरा के जो है दो तहसीलें हैं, तहसील गढ़ी, तहसील उगी और जिला मानसेरा, जिला मानसेरा में तकरीबन 65 है तकरीबन ना, तो मेरे ख्याल में एक दफा राशन आया दो लोगों के लिए, एक दफा आया चार लोगों के लिए, तो अब आप अंदाजा लगा लें।
तो ये किसने दिया, कोई इंडिविजुअल्स ने दिया कि कोई तंजीमों ने दिया?
जी एक एक इलाइट के नाम से थी और एक जो थे वो इंडिविजुअल दिया था जी।
अच्छा, यानी सिर्फ एक तंजीम आप तक पहुंची मानसेरा में और हुकूमत का कोई
तीन चार लोगों को दिया बस।
अच्छा, और टोटल
आज
65 है, तो वो 65 लेकिन वो अलग अलग रह रहे हैं ना, तो उन तक कैसे पहुंचेगा, उनको उन तक कैसे?
नहीं, वो ऐसा है मैम कि जैसे मुझे दो लोगों ने पैसे भिजवाए, एक लाहौर से मेरी फ्रेंड है उसने, और एक इस्लामाबाद से मेरी फ्रेंड है उसने, और एक साहब यहाँ है मानसर में, उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो वो पैसे मैं लिफाफे बंद करके उनके दरवाजों पे जाके दिए हैं मेरे शागिर्दों ने। जी
अच्छा
नजदीक
अच्छा
नजदीक रहते हैं मानसर, कोई इतना बड़ा शहर नहीं है,
अच्छा
तो
अच्छा
पैदल ही बंदा था, एक तो 5 मिनट के मुसाफत पे, 3 मिनट की मुसाफत पे, इस तरह नजदीक नजदीक ही है तब
अच्छा अच्छा
तकरीबन।
तो फिर ये अभी तक हुआ, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक
हुकूमत
लॉकडाउन
की
के
तरफ से
दौरान
कुछ नहीं, कुछ
अभी तक कुछ नहीं मिला?
नहीं।
अच्छा,
जी
तो फिर अब बताइए कि कितने दिन का राशन अब आप लोगों के पास मौजूद है इस वक्त?
इस वक्त तो मेरा खाली खत्म हो गया अभी लॉकडाउन जो हुआ था तो वो तो खत्म ही हो गया।
अच्छा
बाकी ये कि जो पैसे भी भिजवाए थे वो भी तकरीबन मैं डिस्ट्रीब्यूट किए, तो मैंने कहा, मैंने एक ऐसे पैकेज बनाया कि जो बुजुर्ग और जो बीमार ख्वाजसरा है उनको मैंने पैसे दिए ना, तो वो ये तीनों पैसे मिला के ना 3500 रुपये बन रहे थे फी पर्सन के ना, तो वो मैंने कुछ लोग कुछ ख्वाजसराओं को दिए जो कि बुजुर्ग भी थे और मतलब कुछ बीमार थे उनको भी मैंने दिए, ताकि वो भी दवाइयाँ तो वगैरह जारी रख सके। अभी आप यकीन करेंगे मुझे, जैसे मैं पाकिस्तान के बहुत सारे ग्रुप में हूँ और अवेयरनेस के प्रोग्राम भी कर रही हूँ, जैसे मैं कि भाई अपनी सेहत का ख्याल रखें, अगर आप ठीक रहेंगे तो फिर किसी और की हिफाजत कर सकेंगे, अगर आप ही बीमार होंगे तो फिर क्या। और इस तरीके से मैंने जो मास्क बनाने का तरीका है वो भी बताया मैंने, और अब वहां से मुझे मुख्तलिफ जगहों से कॉल आ रही जी राशन कहाँ से लेना आता है जी, मैंने कहा मैं तो कैब में बैठी हूँ यहाँ पर, फिर मैं उनको ये कर आपने करवा देती हूँ। अब मुझे फोन आ रहे हैं कि जी वो हमारे जो बुजुर्ग गुरु हैं उनको मतलब शुगर का मसला, उनकी दवाइयाँ नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर का है, इस तरीके के जो मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा है।
तो अभी आपके पास ये ई हैंड के सदर तो पहुंच गए हैं नादिर अली खान, लेकिन जाहिर है कि हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये प्रोग्राम जो कोई भी सुन रहा है, मानसेरा में फलाही तंजीमें भी सुन रही हैं और हुकूमत के इदारे भी इसको सुन रहे होंगे, तो आपकी तरफ वो पहुंचे, और आप ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी है उनकी, और वो भी लॉक्ड अप है और वो भी बेरोजगार हो चुके
जी
हैं, तो
हाँ जी जी
उनके लिए भी
जी जी
खसूसी
वो
बंदोबस्त।
हमारी लोग मदद कर रहे हैं, जैसे हमारी जितने एक्टिविस्ट हैं ना उस वक्त तमाम पाकिस्तान में जो है ना वो अपनी मदद आपके तहत किसी लोगों से रिक्वेस्ट करके या किसी किसी फलाही तंजीम से रिक्वेस्ट करके वो राशन लेकर अपने ख्वाजसरों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो तो हम तो वैसे भी किसी की याद में नहीं रहते हम लोग तो, और इस जैसे हर किसी इस मौके पर जिस जो है कोरोना वायरस का जो चल रहा है इसमें हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, तो हम तो किसी को याद ही नहीं,
हमने आपको याद किया, हम आप तक
नहीं आप
पहुंचे।
नहीं आप क्या। और जो हमारे साथ जिला है एबटाबाद वहां पे भी किसी को कुछ नहीं पहुंचा। अब मैं अपने जिले को देख, मुझे अकेले जाने है, मैंने फेसबुक पोस्ट लगाई, मैंने कहा प्लीज एबटाबाद के ख्वाजा सरा, अभी तक कुछ किसी ने भी रब्ता नहीं किया। हरिपुर में डॉक्टर मेमन है इस्लामी स्कॉलर उसमें हरिपुर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपने थ्रू कोई राशन वगैरह पहुंचाया उनको ना।
अच्छा
और मसला यह है कि अगर हम लोगों को इस तरीके से प्रोडक्शन हाउस दे दिए जाते तो आज हम लोग कम से कम ये कराए हों कि तो बहुत से बच्चे, अब आमदनी भी है नहीं, आगे रमजान है वैसे भी नहीं होगा काम वगैरह, तो फिर गुजारा मुश्किल ही है।
बिल्कुल। अच्छा, एबटाबाद के अलावा आप दूसरे शहरों का जिक्र कीजिए जहां आप समझती हैं कि ये मसला मौजूद है उनको।
जी स्वात से भी मुझे कॉल्स आ रही हैं, स्वात से आ रही हैं, हरिपुर से आ रही हैं मुझे कॉल्स, और जो है अपना क्या कहते हैं इसको मरदान हो गया, और फिर
मतलब
चकवाल
ये
साइड पे,
चकवाल से,
जी
चकवाल
जी
से
चकवाल साइड से भी, चकवाल साइड से, और क्या कहते हैं इसको पंजाब में काफी ऐसे इलाके हैं जहाँ से मुझे इस तरह के
कॉल्स
कॉल्स
आ रहे
वगैरह
हैं,
कर रहे हैं।
कॉल्स
जी
कर रही हैं।
जी
तो बेहद शुक्रिया नादरा खान, आपने हमसे बात की, और हम चाहेंगे कि आपके साथ जो दूसरी रुकन हैं या मौजूद हैं हजारा ट्रांसजेंडर एसोसिएशन की, उनसे भी थोड़ी थोड़ी सी
जी
बात
जी
करा दीजिए, ताकि हम आपके मसाइल को मुतल्लिका हुकाम तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचा सकें।
बहुत
तो
शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया।
बात करेंगे हम कशिश से, कशिश
जी कशिश, कशिश है
जी,
जी,
कशिश से
जी
बात करा दीजिए। हेलो कशिश, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम,
जी कशिश,
वालेकुम
तो
सलाम।
कशिश आप बताइए कि अब जब आप लोग अपने घरों में वैसे भी ज्यादातर बंद ही रहते हैं, अलग ही रहते हैं, लेकिन इस वक्त खासतौर पर जबकि बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल पा रहे, तो क्या क्या मसाइल आपको पेश आ रहे हैं?
बस यही मिसाइल कि हम
हम बाहर नहीं जा सकते, बस वो तो कोरोना की वजह से नहीं जा रहे, बिल खर्चा भी नहीं है हमारे पास, यही है बस, क्या करें।
तो आपको आपको वैसे ये मालूम हो गया, ये मालूमात तो आप तक पहुंच गई कि कोरोना से खुद को कैसे बचाना है।
हाँ, वो तो हमारे गुरु ने हमें बहुत सिखाया है ना कि अंदर बैठो, सफाई का ख्याल रखो, बाहर नहीं जाओ, बाहर नहीं घूमो, तो यही तो मास्क लगाओ, तो हाथों पे वो करो, अपने आप को महफूज रखो।
अच्छा, तो वो सारे तरीके आप उस पर अमल कर रही हैं, और जो सोशल डिस्टेंस यानी दूर दूर बैठना, पास पास नहीं बैठना किसी के,
जी,
ये है। तो लेकिन फिर भी फारिग वक्त में, फारिग सारा वक्त ही अब तो फारिग है, तो क्या करती हैं आप घर में इस वक्त?
बस हम तो यही बस अपने घर में घूमते हैं, कभी बस काम वगैरह, वैसे घर का कोई काम हो बस यही सफाई वगैरह कर लेते हैं।
तो टीवी वगैरह नहीं देखती खबरें?
बस खबरें खबरें वगैरह तो देखती हैं,
अच्छा, टीवी नहीं है आपके
हमारी
पास?
गुरु भी बिजी होती है जी।
टीवी नहीं है आपके पास?
टीवी भी है हमारे पास
अच्छा, लेकिन आप ज्यादातर अपना मोबाइल पर देखती रहती हैं।
जी।
अच्छा, तो कोई कुछ कहना
और हमारे
चाहेंगी?
गुरु भी हमें मोबाइल में ना दिखाती रहती है ना खबरें वगैरह, कोई अच्छी कोई बात हो तो वो भी हमें
वो
दिखाती है गुरु
बिल्कुल बिल्कुल, यानी गुरु आपकी
जी।
बहुत मदद कर रही है इस वक्त। तो कुछ कहना चाहेंगी? इस वक्त पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में लोग आपको सुन रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर दीजिए।
बस हम यही दुआ करते हैं कि ये मुल्की हालात ठीक हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए
अच्छा, सबके लिए दुआ करेंगी आप?
जी। हम सबके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इस बीमारी से निजात दे सबको।
बहुत शुक्रिया कशिश। अब आप जमना हमारे आपके साथ मौजूद हैं, और इस मीटिंग में जो कि खास तौर पर कोरोना बहरान में आपकी मदद के लिए ई हैंड्स वालों ने मुनाकिद की है, और एसोसिएशन जो आपकी है हजारा की, वो नादरा खान के फ्लैट में ये मीटिंग जारी है। तो जमना को फोन दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जमना।
वालेकुम अस्सलाम।
जमना बताइए कि लॉकडाउन जारी है, आप लोग घरों में बंद हैं, आप अपने जाती मसाइल बताइए।
बस अंदर बैठे हैं मैडम, अंदर ही आते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, इस वजह से बस बीमारी की वजह से बस। सबको अल्लाह वो दे, सब ठीक हो जाए, हालात ठीक हो जाए।
तो कोई ज्यादा हर वक्त पास रहने से लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे आपस में?
नहीं, होते हैं झगड़े, नहीं होते।
वे नहीं होते। तो घर के काम में आप क्या करती हैं फिर अपने आप को मसरूफ रखने के लिए?
वो डिटॉल डाल के पानी सब स्प्रे करती हूँ कमरे में, आप पर भी करती हूँ, हाथों पे भी पाँव पे भी, बस अंदर ही रहती हूँ, सफाई वगैरह करके बैठ जाती हूँ।
अच्छा, और टीवी देखती हैं उसके बाद?
नहीं टीवी तो मैं नहीं देखती, बाहर सीढ़ियाँ सीढ़ियों पे बैठती हूँ
अच्छा, सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं लेकिन टीवी नहीं देखती, ताकि हवा बाहर की लग
जी।
जाए, खुली हवा में थोड़ी सी देर। हाँ
जी
अच्छा, तो राशन वगैरह आपके पास है? आप आपका अपना अलग फ्लैट है ना?
नहीं, इनके साथ ही रहती हूँ मैं,
अच्छा, तो सब मिलके चार
इनके
पांच
साथ
लोग
ही।
रहते हैं अपने गुरु
जी
नागरा
जी हाँ
नागरा। हाँ अच्छा,
जी जी
तो इसका मतलब है आपको कोई इस वक्त तक तो राशन मिल रहा है अब?
नहीं, हमारे गुरु ने सब हमें नहीं दिया ना, पहले वालों सबको दिया, तो बुजुर्ग जो थे उनको दिया, हमारे नहीं, हमें नहीं मिला।
तो खाना तो मिल रहा है ना रोजाना?
हाँ मिल रहे हैं, सब्जी बना के खा रहे हैं, मुर्गी बना के खा रहे हैं,
अच्छा
गोश्त खा रहे हैं।
चलिए, आपको तो सब्जी मिल जाती है, तो सब्जी कौन, वो सब्जी वाला खुद आता है कि आप लोग लेने जाते हैं सब्जी?
मैं खुद लेने जाती हूँ, खुद लेने के जाती हूँ, हाथों पे दस्ताने लगा के, मास्क लगा के स्प्रे करके जाती हूँ।
ये था उस मीटिंग का अहवाल जो खाजासराओं के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ई हैंड के फाउंडर और सीईओ नादिर अली खान ने ट्रांसजेंडर एसोसिएशन ऑफ हजारा के अरकान के साथ मुनाकिद की थी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खुसूसी नशरियात में आज का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, मैं हूँ यास्मीन जमील।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
न्यूयॉर्क के बारे में आप सब लोगों को इल्म हो चुका होगा कि न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस का हमला बड़ा शदीद है और रोज़ाना बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। लेकिन इन अमवात के बाद ख़ास तौर पर मुसलमानों की तदफीन का और उनके फ्यूनरल्स का और उनके नमाज जनाजा का क्या हो रहा है, इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है इमाम अहमद अली को, जो ब्रुकलिन की इकरा मस्जिद में इमाम और खतीब हैं और न्यूयॉर्क की जो रिजर्व पुलिस फोर्स है उसके भी उसमें ऑक्सिलरी सर्जेंट हैं, जबकि इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स चैपलन फोर्स जिसके ये फाउंडर हैं। तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस वक्त क्या हालत है मुसलमानों की तदफीन के बारे में और उनके नमाज जनाजा के बारे में जो न्यूयॉर्क में इस वक्त कोरोना वायरस के दौरान जिनकी बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अहमद अली साहब।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
इमाम अहमद अली साहब कुछ बताइए कि क्या न्यूयॉर्क में इस वक्त उमूमी सूरत हाल क्या है, रोजाना कितनी अमवात हो रही हैं मुसलमानों के अलावा भी जो आपके मुशाहदे में आ रही हैं?
जी, इस वक्त मैं अरयान मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज ब्रुकलिन न्यूयॉर्क की हेल्प कर रहा हूँ नमाज जनाजा और इस्लामी तकफीन के सिलसिले में। तो सिर्फ इस वक्त अरयान मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज के अंदर हमें तकरीबन रोज 10 से 15 बॉडीज जो हैं वो मुख्तलिफ कब्रस्तान में तदफीन के लिए लेके जानी होती हैं, और जिनमें से तकरीबन 5 या 7 जो हैं वो सिर्फ मैं एक सेमेट्री एक कब्रस्तान के अंदर लेकर जाता हूँ, और हम वहाँ पे उसकी नमाज जनाजा का और इस्लामी तदफीन का जो है फिर इस्तेमाल करते हैं। फैमिलीज में से 5 से 10 लोगों के दरमियान लोगों की गुंजाइश होती है, मुख्तलिफ कब्रस्तानों का मुख्तलिफ असूल है, तो उसी उनके असूलों को फॉलो करते हुए फिर हम नमाज जनाजा भी अदा करते हैं और तदफीन भी करते हैं।
तो उनकी उनके गुसल को इस वक्त उनको गुसल नहीं दिया जा रहा मैयतों को, खासतौर पर जो मुसलमानों की हैं?
जो भी बॉडीज हॉस्पिटल से हम रिसीव करते हैं वो ऑलरेडी एक प्लास्टिक बैग के अंदर बंद होती है, और जितने भी हमने डॉक्टर से भी बात की है, मुसलमान डॉक्टर से भी बात की है और बाकी भी फ्यूनरल होम से जो हमने बात की है, तो उसमें यही सामने आ रहा है कि COVID-19 से जो जितने लोगों की भी अमवात हो रही है उनकी वॉशिंग के लिए कोई प्रॉपर हमारे पास इस वक्त एक तो इंतजाम भी नहीं है सेफ्टी के, और कुछ स्कॉलर से भी जो बात की है मुख्तलिफ ये जो हमारे फ्यूनरल होम्स हैं, तो तकरीबन तमाम के तमाम जो फ्यूनरल होम यहाँ पे न्यूयॉर्क में मौजूद है वो तमाम ही तयम्मम करवा के और फिर कफन के अंदर उस प्लास्टिक बैग को लपेट देते हैं और फिर कैस्केट यानी ताबूत के अंदर उसको रख के तो फिर कब्रिस्तान में ले जाके नमाज जनाजा अदा करके तदफीन की जाती
है। और नमाज जनाजा में ज्यादा लोग शरीक नहीं हो सकते?
नमाज जनाजा में ज्यादा लोग शरीक इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि मस्जिद यहाँ पे बंद है, तो पहले मस्जिद खुली होती थी तो वहां पर हम नमाज जनाजा अदा कर लेते थे।
तो हमने ये भी सुना, मालूम नहीं ये खबर दुरुस्त है या नहीं, कि जब भी कोई कोविड से किसी इंसान का इंतकाल होता है तो घर वाले उसको घर में छोड़कर और इन्फॉर्म करके और घर से चले जाते हैं, कोई ऐसे भी सूरत हाल हुई है?
जी, मैंने घरों से भी जाके जो है वो मैतें रिसीव की हैं और लोगों के अंदर वाकई बहुत डर है कि जैसे कोई उनका प्यारा जो है दुनिया से रुखसत होता है तो वो अक्सर डर और खौफ की हालत में ही होते हैं कि फैमिली जो है वो किसी दूसरे घर में भी चली जाती है, कुछ जैसे बहुत करीबी जो ताल्लुक वाले हैं वो रह जाते हैं और फिर उनकी कोशिश होती है कि फ्यूनरल होम वाले जो है वही सारा का सारा काम करें, तो फिर हमें ही जाना पड़ता है और हम जाके फिर अपने मतलब जिम्मेदारी पे अपने रिस्क के ऊपर हम मैयत को रिसीव करते हैं और उसको फिर करके फ्यूनरल होम में ला के और उनके जो है कफन दफन का इंतजाम करते हैं।
तो आपका अपना आपके पास अपने कितने वॉलंटियर्स होते हैं जो ये काम कर रहे हैं, या ये वाकई जो जो मस्जिद का अमला है वो ये काम करता है या वॉलंटियर्स करते हैं?
नहीं, ये फ्यूनरल होम जो है उनका अपना एक निजाम होता है और मैं तो चूंकि एक मस्जिद के साथ रिलेटेड हूँ, मैं पहले इनकी हेल्प किया करता था, कभी महीने में एक दो दफा इनको मदद की जरूरत पड़ती थी, तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले इन्होंने मुझसे रब्ता किया जब ये अमवात शुरू हुई कि कुछ थोड़ी सी हमारी पास बंदों की कमी है, आप अगर मदद कर दें, तो मेरा ख्याल था कि शायद ये एक दो दिन में جائیں گی یا یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے معاملہ کریں گے, لیکن اب تقریباً 2 ویک سے زیادہ ہو چکے ہیں اور روز 6-7 مریضیں لے کے جانی پڑ رہی ہیں. بیچ میں مجھے خود بھی بخار ہو گیا تھا, تو مطلب لیکن پھر بھی اب کیا کریں, ذمہ داری ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنی ہے اور ساتھ میں تدفین کرنی ہے, تو پھر میں بھی مجبور ہوں دوائی وغیرہ لے کے کوشش کر کے ماسک وغیرہ لگا کے تو جانے پہ مجبور ہوں. اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے جلد ہماری جان چھڑائے تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ نارمل دوبارہ سے ہو جائے.
تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس چیپلن فورس, وہ اس وقت کچھ کام کر رہی ہے کیونکہ آپ تو ادھر مصروف ہیں, تو اس چیپلن فورس کا کیا ہو رہا ہے؟
نہیں, وہ ہم اسی کے اندر شامل ہیں کیونکہ مشکل وقت میں چیپلن کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ مذہبی طور پہ لوگوں کی مدد کرنا ہوتی ہے. تو اس میں لوگ جب ہمارے پاس, ابھی کل مجھے ایک کال آئی تھی, خاتون ہاسپٹل میں فیملی کو اپنے جو بات چیت کو کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے انگلش کے اندر, پھر وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر ہم فیملی جو ڈاکٹر وغیرہ سے رابطہ کر کے ان کی صحت کے متعلق جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ان کی فیملی کو پتہ کر کے بتاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے چیپلن جو ہیں وہ مدد کر رہے ہیں, اور جو بھی لوگ ہمارے چیپلن جو ہیں ان کے گھروں میں بزرگ ہیں, انہیں ہمارا یہی مشورہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ گھروں سے نہ نکلیں, کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ بزرگوں کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور جوان لوگ جو ہیں وہ اس سے تھوڑا بہت بیمار ہوتے ہیں لیکن ریکور کر جاتے ہیں. تو جتنے لوگوں کے گھر میں بھی والدین ہیں یا بزرگ ہیں ان کو ہم اس طرف نہیں لا رہے, انہیں ہم نے یہی مشورہ دیا کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں تاکہ آپ کے بزرگوں کی جو ہے نا جان کو کوئی خطرہ نہ ہو.
اچھا, یہ تو ذکر آپ نے کیا نیو یارک کا, کیا آپ کو اس بارے میں بھی علم ہے کہ نیو یارک کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں, خاص طور پر نیو جرسی کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ اس کا حملہ ہوا ہے, تو کچھ اوور آل پورے نیو یارک اسٹیٹ کی اگر آپ سے میں پوچھوں تو کچھ آپ بتا سکیں گے کہ اوور آل پورے نیو یارک میں کیا صورت حال ہے؟
دیکھیں, پورے نیو یارک میں تو میرے خیال میں اس طرح سے ہم بات نہیں ہو رہی, یہ زیادہ جو افیکٹڈ علاقے ہیں یہ نیو یارک سٹی کے 5 boroughs ہی ہیں, اور اس کے ساتھ نیو جرسی کے اندر بھی کافی حالات خراب ہیں کیونکہ میں نے وہاں بھی ہاسپٹل سے جا کے باڈیز پک کی ہیں. وہاں پہ بھی ہاسپٹلس کے باہر جو ہے کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور ان کے اندر وہ میتوں کو ترتیب کے ساتھ رکھتے جا رہے ہیں. تو باہر کے حالات, جتنے بھی لوگوں سے دوستوں سے میری بات ہوئی ہے وہ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس گھروں میں رہنا آسان ہے, کھلے کھلے گھر ہیں, دور دور گھر ہیں, اور وہاں پہ اپنے آپ کو کوارنٹین کرنا جو ہے وہ آسان ہے. لیکن نیو یارک کے اندر اب جیسے ہماری بلڈنگ ہے یہاں پہ اب 1000 کے قریب اپارٹمنٹ ہوں گے, تو ان کے اندر آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے باہر نکلنے کے لیے, وہاں سے اگر کوئی بیمار آدمی گزرے گا تو یقیناً دوسرے لوگوں کے لیے خطرہ موجود رہتا ہے. اسی وجہ سے شاید نیو یارک جو کہ کنجسٹڈ بہت زیادہ ہے, اور نیو جرسی کے بھی علاقے جو قریب ہیں جن کے لوگوں کو نیو یارک آنا پڑتا ہے انہیں خطرہ زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے شاید لوگ زیادہ بیمار ہو رہے ہیں.
تو آپ نے تو اپنی مسجد کے بارے میں, اپنے فیونرل ہوم کے بارے میں بتایا کہ وہاں 6-7 آپ روزانہ میتیں آپ ان کی تدفین کر رہے ہیں اور نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, لیکن اوور آل کچھ آپ بتائیں گے کہ اوور آل کتنے نیو یارک میں روزانہ ہو رہے ہیں فوت؟
جی, جو فیونرل ہوم ہے وہ یہاں پہ ہمارے امتیاز احمد صاحب ہیں اور ظفر اقبال صاحب اظہر صاحب, یہ بھائی ہیں, تو یہ ان کا یہ فیونرل ہوم ہے الریان مسلم فیونرل سروسز. تو میں نزدیک میں مسجد ہے, تھوڑی دور نہیں ہے, اقرا مسجد, یہ ترکش کمیونٹی کی مسجد ہے, تو وہاں پہ ہوں خطیب. اور باقی جو میں قبرستان میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں, تقریباً ہر فیونرل ہوم کے پاس اسی طرح روز کے 10-15 جنازے جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور تقریباً اتنی جو ہے وہ تعداد میں تدفین کر رہے ہیں.
تو کتنے فیونرل ہومز ہیں وہاں نیو یارک میں جہاں جو آپ کا ایریا ہے؟
میرے نالج کے اندر جو ہیں تقریباً 4 کے قریب فیونرل ہومز ہیں نزدیک جو موجود ہیں, اس کے علاوہ جو تھوڑے دور ہوں گے وہ ان کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن 4 کے قریب فیونرل ہومز ہیں ان کا مجھے معلوم ہے.
ठीक, तो उन चार में तकरीबन रोजाना 12 लोग आ रहे हैं, इसका मतलब कि सिर्फ आपके एरिया में तकरीबन 50 मुसलमानों की अमवात हो रही है, या वो जो कि आपके।
असल में इस तरह से होता है कि फ्यूनल होम के अंदर जो है, जो कि इस्लामी बरियल के लिए लोग रब्ता करते हैं, तो सिर्फ हमारे इलाके से लोग नहीं आते, लोग लॉन्ग आइलैंड के भी होते हैं, क्वींस के भी होते हैं, ब्रुकलिन के भी होते हैं, न्यू जर्सी के भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि फैमिली जो है वो ज्यादा फैमिली किस इलाके में रहती है या किस फ्यूनल होम पे उनका ज्यादा एतबार होता है। कुछ फ्यूनल होम प्राइसेस भी बढ़ाई हैं, कुछ ने सर्विसेज भी खराब कर दी हैं। जैसे एक फ्यूनल होम के मुताबिक हमें पता चला था कि वो फैमिली के बगैर ही मैयत दफना के चले गए, और तो इस तरह के भी मतलब केसेस सामने आ रहे हैं, और उसके अलावा ओवर चार्जिंग की भी कंप्लेंट आ रही हैं।
तो कुछ कुछ हमारे सुनने वालों को बताइए कि यहाँ अमरीका में जो एक शख्स की बुरियल पर कितना खर्च आता है?
ये डिपेंड करता है जी कि किस सेमेट्री के अंदर उन्होंने दफनाना है, क्योंकि हर जगह की जमीन कीमत मुख्तलिफ होती है। जो लोग लॉन्ग आइलैंड में दफनाना चाहते हैं वहां पर प्राइस जो है आप कह सकती हैं कि 6,000 प्लस तक चली जाती है, और जो न्यू जर्सी के अंदर जो है वो प्राइस आजकल तकरीबन 3,500 से 5,000 के दरमियान जा रही है। डिपेंड करता है फिर भी कि कौन सी सेमेट्री के अंदर दफनाना है, क्योंकि ये तीन चार्जेस होते हैं। एक कब्र का चार्ज होता है, एक चार्ज होता है सेमेट्री यानी कब्रस्तान वाले, उन्होंने जब कब्र को खोदना और बंद करना उसका वो अलग से चार्ज देते हैं, एक वो चार्ज होता है। और फिर एक फाइनल चार्ज जो है वो फ्यूनरल होम का होता है कि यानी जिस बंदे ने कब्र फ्यूनरल डायरेक्टर ने जाके मैयत को रिसीव करना है हॉस्पिटल से, लेके आना है, फिर उसको डब्बे में डालना है, फिर उसका कफन दफन कर करना है, एक ये फ्यूनरल चार्ज होता है। तो ये तीन चार्जेस पे मुश्तमिल होता है, जिसमें फ्यूनरल होम जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसे फ्यूनरल चार्जेस मिलते हैं, बाकी जितने चार्जेस होते हैं वो कब्रस्तान और कब्रस्तान के जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कॉस्ट होती है।
तो इमाम साहब, इमाम अहमद अली साहब, ये काफी महंगा हो जाता है किसी एक शख्स का मरना और उसकी तदफीन के तमाम मराहिल से गुजरना, तो क्या वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कोई अरेंजमेंट या कोई मरात होती है हासिल?
जी, जैसे मैं अपनी बात करूँ, खुदा ना खास्ता मैं मर जाऊँ तो मेरे पास तो फ्यूनरल के लिए पैसे नहीं, मतलब यही हर न्यूयॉर्क में रहने वाले तकरीबन बंदे की यही हालत होती है। हम लोग पे चेक टू पे चेक हम लोग चलते हैं, तो इसमें ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती तो अरयान मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज की तरफ से तो ये होता है कि वो बता दें हमें, तो फ्यूनरल होम जो है वो उनकी तदफीन के अखराजात खुद से अदा कर देते हैं, और फिर उसके बाद मैं एज अ थर्ड पार्टी एक फंड रेजर उनके लिए चला देता हूँ ऑनलाइन, तो वहां से फिर हम जो भी उनकी कॉस्ट होती है उसको हम रिकवर कर लेते हैं।
तो बहरहाल ये कि ऐसा नहीं होता कि किसी की तदफीन होने से रह जाए सिर्फ इस वजह से कि उसके पास फैमिली के पास पैसे नहीं है।
जी, ये अरयान मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज का एक बहुत अच्छा एग्जाम है। आज से तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह बंदा दुनिया से चला जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने फिर उन्होंने यही कहा था कि अगर कोई चला जाता है तो आप लोग उसकी तदफीन करें और हमें बता दें कि कितने एक्सपेंस है, ताकि हम फिर वो आपको ऑनलाइन डोनेशन से इकट्ठे करके तो दे दिया करें। तो हमने फिर 2019 के अंदर हमने 5 मईतों की तरह तदफीन की थी और 2 मईतें हमारे पास आई थी अभी 2020 के अंदर। उसके अलावा अरयान मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज ने इस साल भी, अभी ये कोरोना के दौरान भी, तकरीबन 4 से 5 मईतें जो है वो इसी तरह फीसबिल्ला करके दफनाई है, जिनमें उनकी बड़ी ये मेहरबानी होती है कि वरना कुछ फ्यूनरल होम्स हैं वो बॉडियों को रोक लेते हैं कि भाई पैसे आएंगे तो हम दफनाएंगे, इनका ये नहीं है। ये एक हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी एक नेमत है कि ये बगैर पैसों के ही उसको दफना देते हैं, बाद में अगर रिकवर हो जाए तो हो जाए, वरना फिर भी इन्होंने कभी हमसे मांगे नहीं कि ये पैसे थोड़े हो गए हैं तो आपने पूरे नहीं किए। बाद दफा थोड़े भी डोनेशन में आते हैं तो थोड़े भी मतलब वो कर जाते हैं कवर।
اچھا یہ تو ہوا نا مسلم کمیونٹی کا تدفین کا مرحلہ یا مسائل. دوسری کمیونٹیز جیسے ہیں کرسچن کمیونٹی ہے یا دوسری کمیونٹیز, ان کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ان کی جو
تدفین کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ یوزلی 10,000 to 20,000 تک جاتے ہیں, اور اس کے اندر ان کی میت کو لے جانے کا طریقہ اور وہ مختلف ہوتا ہے, کیونکہ ان کی جو سرمنی ہے وہ اور طرح سے چرچ میں یا فیونرل ہوم کے اندر ہی جگہ بنی ہوتی ہے, وہاں پہ اس کو وہ ادا کرتے ہیں, پلس وہ تھوڑا سا ڈیلے بھی ان کے لیے اس کو بھی وہ برا نہیں مانتے, تو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ زیادہ مشکل کام اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہمیں میت کو جلد از جلد دفنانا ہوتا ہے, اور اس میں پھر ہمارے پاس ہمیں جو ہے نا وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن باقی کمیونٹی جو ہے وہ بھی ایک تو ہاسپٹل کے اندر جتنا میکسیمم ٹائم وہ لگا سکتے ہیں, پھر فیونرل ہوم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس اپائنٹمنٹ کس طرح چل رہی ہے, کہ وہ روز کتنی 5 bodies یا 10 bodies تیار کر سکتے ہیں یا نہیں, پھر وہ باڈیز کو پراپرلی پریپیئر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کیسکٹ یعنی تابوت کے اندر رکھ کے پھر اس کی باقاعدہ ویوئنگ ہوتی ہے, اور اس طرح سے معاملہ چلتا ہے.
تو اس وقت جو مسلمانوں کی جو اموات کا آپ ذکر کر رہے ہیں کورونا کے بارے میں, کورونا کی وجہ سے, ان میں زیادہ تر بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, کون کون آپ نے دیکھے؟
میں نے زیادہ تر جو لوگ دیکھے ہیں وہ 60+ کے دیکھے ہیں,
اچھا,
اور 60 سے لے کے تو ہم نے 95 ایئر تک کی جو میں نے خود مشاہدے بھی کیے, شاید اس سے بھی زیادہ بزرگ ہوں, لیکن 60 سے 95 تک کے مرد و خواتین میں نے خود دیکھے, اور کم سے کم عمر میں کل 1988 کی کے فن کی پیدائش کے جو ہے ایک جوان بھائی جو ہے وہ بھی ہم نے ان کی بھی تدفین کی ہے, اور اس کے علاوہ 42 ایئر اولڈ کے بھی میں نے ایک بھائی جو ہے ان کی بھی میت کو ریسیو کر کے تو دفنانے کے مرحلے میں میں شامل رہا ہوں.
بے حد شکریہ امام احمد علی صاحب, آپ برکلن میں اقرا مسجد کے امام ہیں اور خطیب ہیں, اور آپ آگزلری سرجنٹ ہیں ریزرو پولیس کے نیو یارک کی, اور آپ آرگنائزیشن یونائٹیڈ اسٹیٹس چیپلن فورس کے بھی فاؤنڈر ہیں, اور الریان مسلم فیونرل سروسز سے بھی آپ وابستہ ہیں, اور آپ وہاں نیو یارک میں اس وقت جو لوگ کرونا کی وجہ سے جن کی اموات ہو رہی ہیں ان کے نماز جنازہ اور تدفین کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے وائس آف امریکہ واشنگٹن سے گفتگو کی اور بہت مفید معلومات ہمارے سننے والوں تک پہنچائیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اس پروگرام میں اب ہم آپ کو ملواتے ہیں سیف الدین صاحب سے, سعودی عرب میں یہ ہیں, الیکٹریکل انجینئر ہیں, بڑے عرصے سے سعودی عرب میں ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کرونا کی اس وبا کے دوران ان کو کیا مسائل درپیش ہیں اور کس طرح وہ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں. السلام علیکم سیف الدین صاحب.
وعلیکم السلام.
سیف الدین صاحب کچھ بتائیے کہ کیا لاک ڈاؤن میں آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں, کیا مسائل پیش آ رہے ہیں, حکومت آپ کی کیا مدد کر رہی ہے, فلاحی ادارے آپ کی کیا مدد کر رہے ہیں؟
بولیے. ہمارے پاس تو یہاں سعودی عربیہ میں 80 ریجن میں رہتا ہوں جو ساؤتھ پارٹ آف سعودی عربیہ کہلاتا ہے, تو یہاں پہ ہمارے بہ نسبت دوسرے ریجنس کے کیسز کچھ کم ہیں, تو اس وجہ سے ہمارے پاس کرفیو چل رہا ہے 1.5 مہینے سے تقریباً, جو شام کو 3 بجے شروع ہوتا ہے اور صبح 6 بجے تک کرفیو چل رہا ہے. باقی رہا جیسے کہ میں گورنمنٹ ادارے سے کام کر رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اسٹے ہوم سے کام کرنا ہے ڈسٹینس سے. تو یہاں تو ماشاء اللہ ہمارے شہر میں اتنا زیادہ کیسز نہیں ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. باقی رہی بات جدہ, ریاض, مکہ, مدینہ میں, ان میں یہ ہے کہ کچھ ڈسٹرکٹس میں, کچھ علاقوں میں انہوں نے 24 آورس کرفیو لگایا ہے جو جہاں گورنمنٹ ان کی ہیلپ کر رہی ہے, اور لاسٹ ویک سے تو انہوں نے یہ ہے کہ ان گھروں میں جا کے منسٹری آف ہیلتھ کی ٹیم جو ہے نا پورے فیملی ممبرس کی وہاں ٹیسٹ کر رہی ہے کرونا کا.
अच्छा
जिनको उन्होंने कर्फ्यू में लॉकडाउन में रखा है। इस वजह से अगर आप देखेंगी तो लास्ट वीक से तकरीबन डेली बेसिस पे सऊदी अरबिया में 1000 से ज्यादा केसेस अपीयर हो रहे हैं।
तो आप खुद जो है आप अपने घर में वो बंद हैं लेकिन काम आप घर से ही कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग का काम कैसे घर से हो रहा है?
हमारा ये है कि मैं जैसे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक है मेरा, तो मैं डिजाइन रिव्यू भी करता हूँ और प्रोजेक्ट्स की साइट से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लेता हूँ। तो वो सारा काम यही है कि थ्रू द सिस्टम होता है, थ्रू ईमेल या व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, तो उनके थ्रू ही हम ये इंफॉर्मेशन लेकर फिर हमारी जो बॉसेज हैं उनको भी थ्रू ग्रुप बनाए हुए हैं और कंपनी ने हमें थ्रू द सर्वर जो है ना एक्सेस दिया हुआ है। हम वो ईमेल अपनी ऑफिस की अपने पर्सनल लैपटॉप पे एक्सेस है और थ्रू द वन ड्राइव हमें रिकॉर्ड का भी वो दिया हुआ है एक्सेस डाटा, हमने वन ड्राइव पे वो अपलोड कर दिए जो भी ऑफिस से हमें रिकॉर्ड चाहिए था जो ऑफिस के पीसीज थे, तो वो अब हमारे वन ड्राइव पे अपलोडेड है। जो भी रिकॉर्ड चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसके जरिए हम जो है ना अपनी मैनेजमेंट को या अपने डिपार्टमेंट को फंक्शनल रखा है।
अच्छा, तो इसके अलावा आपको कोई राशन वगैरह का कोई मसला नहीं है?
देखें, यहाँ वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से एक इदारा है जो कि इन्होंने हर रीजन में बनाया हुआ है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट अगर किसी को राशन चाहिए तो वो नंबर्स दिए हैं, आप चाहो तो मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूँ बाद में। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है सऊदी अरबिया में, वो हर शहर में उन्होंने मुख्तलिफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को असाइन की जाए, अगर किसी को राशन चाहिए उनको कॉल कर ले तो उनको मिल जाएगा। अब ऐसे लास्ट 3 days बिफोर मक्का में मेरे एक जानने वाले रहते हैं, वहाँ 24 hours कर्फ्यू है, उनको जरूरत थी तो मैंने उनको नंबर फॉरवर्ड किए थे, तो उनको उन चैरिटी वालों ने घर पे पहुँचा दिया राशन। अब रही बात मेरी अपनी, तो मुझे अभी तक कोई जरूरत पेश नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक अच्छी जॉब पे हूँ तो मैं अपने फिलहाल तो खुद अपने जेब से ले रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी शार्टेज जरूरत पेश आई तो मजबूरन हमें भी रब्ता करना पड़ेगा। लिहाजा बात कहने की यह है कि यहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया है कि यहाँ जो लीगल रह रहा है, जो इकामा होल्डर है, या जो इलीगल भी है, जो जैसे उमरे पे आते थे लोग यहाँ स्लिप हो जाते थे, तो ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अगर किसी को भी कोरोना की या कोई भी अलामत जाहिर हो रही है तो वो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में फौरन रुजू करे, और उन तमाम हॉस्पिटल्स को भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछना है कि आपके पास रेजिडेंस परमिट है दिखाओ या क्या है, उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है मिनिस्ट्री से कि आपने उनका ट्रीटमेंट करना है फौरन।
लेकिन इससे जो इलीगल वहां पर मुकीम है उनके लिए लीगल मसाइल तो पेश आ जाएंगे ना इसके बाद?
बात यह है कि जो अभी गवर्नमेंट ने वो हमारी जो है यहाँ पे अपनी एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी, उन्होंने भी नंबर शेयर किए हुए हैं कि जिसको जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर लें। सिंस लास्ट 3-4 days बिफोर जो है ना हमारी एम्बेसी ने भी ये अनाउंस नंबर किए हैं कि अगर कोई पाकिस्तान जाना चाहता है तो वो अपनी गवर्नमेंट ने भी पहले तो सऊदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है हर एम्बेसी को, कंट्रीज को, तमाम कंट्रीज की एम्बेसीज को बोला है कि आप अपने मुल्क के बंदों से वो कर लें, वो उनको इन्फॉर्म कर लें अपनी बुकिंग करा के, उसके बाद हमारी पाकिस्तान एम्बेसी जितने वो मेंबर्स हो जाएंगे उसके बाद वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करके उनकी फ्लाइट का अरेंज कर रही है। जैसे हमारे पास यहाँ तकरीबन 550 हाजी फंसे हुए थे उमरा जायरीन या विजिट वीजा वाले, वो डे बिफोर यस्टरडे जो है ना वो लास्ट फ्लाइट हमारी गई है मुल्तान, जो 252 पैसेंजर्स लेकर गई है उमरा जायरीन। तो अब उमरा जायरीन तो सारे निकल गए हैं, बाकी ये चल रहा है कि हमारी एम्बेसी ने बोला है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स बना के दे दो जो इलीगल हैं, तो मेरा जो ख्याल है कि उनको भी गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि चलो अपनी एम्बेसी के जरिए वो अपने मुल्क अब जा सकते हैं बगैर किसी भी फाइन के या जेल में जाने से। बाकी बात करूं मैं कर्फ्यू की, कर्फ्यू के दौरान अगर कोई यहाँ निकल रहा है तो उसमें जो है ना हमें 10,000 रियाल्स फाइन है और 40 days का जेल है सजा, अगर कोई भी कानून की रिकमेंड कर ही कर रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं तो जिनको प्रॉब्लम है वो भी अब मैं तो ज्यादा बाहर नहीं निकलता क्योंकि मैं 10-12 दिन में बाहर निकलता हूँ या इवन गवर्नमेंट ने ये भी हमें परमिशन दी है कि जिन जिन कंपनीज को इदारों को अपने बंदों की परमिशन चाहिए तो वो गवर्नमेंट में अप्लाई करके थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम वो वर्क परमिट उनकी बना सकते हैं कि वो कर्फ्यू के दौरान भी निकल सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में हम काम करने वाले हैं जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कोई फॉल्ट आ गया तब वो तो फॉल्ट तो हमें रिमूव करना है, वो सॉल्व तो करना है ताकि ये तो नहीं होगा कि कर्फ्यू का टाइमिंग खत्म हो तो वो बंदा फिर जाए। तो इसलिए वो तमाम कंपनीज ने जो है ना वो एक इमरजेंसी लिस्ट बना के उनकी जो है ना वर्क परमिट इशू कर दी है।
तो इस तरह ये है कि सऊदी अरब में कर्फ्यू की पाबंदी भी हो रही है, आम शहरी बड़ी सख्ती से फॉलो कर रहे हैं कि बड़े सख्त जुर्माने हैं, जेल की सजा भी है, और दूसरी ये कोई काम भी नहीं रुक रहा, जो काम जरूरी हैं उनके लिए उन्होंने वर्क परमिट इशू कर दिए हैं कि कर्फ्यू के दौरान वो निकल कर वो काम कर सकते हैं।
जी जी बिल्कुल, हमारे पास ये भी सख्ती है कि एक लेट सपोज अगर आप इस्लामाबाद और पिंडी की बात कर लें तो ये दोनों जड़वे शहर हैं हमारे, तो अगर किसी ने इस्लामाबाद से पिंडी जाना है एरिया में दाखिल होना है तो वो भी इवन ममनू है, यहाँ एक शहर से दूसरे शहर में जो है ना बंदा नहीं जा सकता इवन ड्यूरिंग कर्फ्यू या कर्फ्यू के अलावा भी। तो मतलब हर शहर दूसरे शहर से आइसोलेटेड है, टोटल लॉकडाउन लगा हुआ है। बाकी उन चीजों को दिए इजाजत जैसे वो लॉजिस्टिक वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं जो फूड वगैरह की डिलीवरी करते हैं, वो तो 24 आवर्स उनको परमिट बना हुआ है, वो खुले हुए हैं।
तो बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन साहब, आपने बड़ी तफसील से बताया, आप अगरचे एक आम शहरी हैं लेकिन आप मुकम्मल तौर पर आगाह हैं कि इस वक्त सऊदी हुकूमत क्या कर रही है, कोरोना के बारे में क्या कवायद हैं इस वक्त और उन पर किस तरह अमल करना है। बहुत शुक्रिया आपने हमारे सुनने वालों के लिए ये मालूमात फराहम की। थैंक यू,
ताज़ा तरीन खबरों खुसूसी फीचर्स टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की खुसूसी नशरियात में आज के प्रोग्राम में अब हम आपको लिए चलते हैं तुर्की, जहां मौजूद हैं पाकिस्तान के 92 न्यूज चैनल के सहाफी आतिफ शिराज भट्ट। उनसे पूछते हैं कि तुर्की में इस वक्त क्या हाल है पाकिस्तानियों का। अस्सलाम वालेकुम आतिफ शिराज भट्ट साहब।
वालेकुम सलाम मैडम,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आतिफ शिराज भट्ट बताइए कि क्या सूरत हाल है इस वक्त तुर्की में कोरोना की, और जैसा कि मैंने भी पूछा क्या सूरत हाल है कोरोना की, क्या सूरत हाल है पाकिस्तानियों की, क्या सूरत हाल है वहाँ के स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थे जो पढ़ रहे थे, और उनकी इमदादी सरगर्मियों की या उनकी मसाइल की और उनके मसाइल को हल करने के लिए तुर्की की हुकूमत की कोशिशें और पाकिस्तानी हुकूमत की कुछ कोशिशें। जी
जी, तुर्की में एक तो आपने सबसे पहले जो बड़ा मेन क्वेश्चन किया है कि वो आपको पता है पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा मौत भी हो रही है, लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में मशगूल होकर रह गए हैं, तो इसी हवाले से तुर्की में भी कोरोना वायरस के डेली 4 से 4,500 केसेस डेली एक्टिव हो रहे हैं और तकरीबन ये डेली 35 से 40,000 टेस्ट भी कर रहे हैं, जबकि टोटल जो कोरोना से मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद पूरे तुर्की के अंदर है वो तकरीबन 82,000 के लगभग राउंड अबाउट इतनी तादाद है जो इससे अफेक्टेड हो गए हैं, और जो इनसे सेहतियाब होने वाले अभी तक जो इनसे वो मरीज है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस वायरस से निजात पाई है उनकी तादाद तकरीबन 1,000 कोई 900 के लगभग वो हो गई है। तो आपको पता है तुर्की तो पैसे बेसिकली ये गेटवे है, इसको लोग यूज करते थे यूरोप जाने के लिए, तो इसी हवाले से जो हमारी पाकिस्तानी जो मिडिल तबका जितने भी पाकिस्तान में थे उसके अंदर अपर लेवल भी आ जाते हैं, तो वो 30 से 25,000 लोग राउंड बोर्ड जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो तुर्की के अंदर रहाइश पजीर है बेसिकली इस्तांबुल के अंदर, और सबसे ज्यादा जो आपने पूछा कोरोना के हवाले से वो अफेक्टेड जो ज्यादा है वो सब है भी इस्तांबुल के अंदर ही। तो इस हवाले से लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से काफी जो हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स है वो भी अपने गलों में स्टक होकर रह गया, ना तो वो जॉब कर रहे थे। अब जॉब की भी आप अगर जाने तो उनकी आपको हैरानी होगी कि उनकी सैलरी कितनी है और इलीगल इमिग्रेंट्स को इधर मरा क्या है, वो कुछ भी नहीं। वो क्योंकि एक तो वो इलीगल है, ये भी उनका एक वो तो है ही, मतलब गलत कदम उठाए, वो इलीगल आए। अब 1200 से 1400 लीगल को सैलरी मिलती है, अगर उसी के अंदर एक घर के अंदर उन्होंने 10 अफराद जो इन्होंने आपस में मैनेज किया होता है, उन्होंने रहना है, वो आपस में जैसे भी शेयरिंग करते हैं, वो अपना गुजारा करते हैं जिंदगी का। तो दूसरा ये, अब जैसे ये लॉकडाउन की सूरत बनी है, ना तो वो घरों से बाहर जा सकते हैं, ना वो काम पे जा सकते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तानी कौंसुलेट में बोला, हमसे भी रब्ता करने की कोशिश की कि आप हमारी मदद करें। फिर मैंने पाकिस्तानी कौंसुलेट में एक कौंसल जनरल है इधर बुला रहा बादशाह साहब, उनसे बात की। उन्होंने फिर अपने कौंसुलेट में अपने जितने भी अपने अमले से बात की, वो उन्होंने आपस में मिलजुल कर, सलीमुल्लाह न्याजी साहब है जो सेकंड कौंसल जनरल है, उन्होंने आपस में मिल के तकरीबन 200 के लगभग फैमिली को राशन का इंतजाम किया। वो फिर हमने अपने 92 न्यूज टीम के हमरा वो जाके डोर टू डोर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट थे उनके घरों तक जाके तहसील मुहैया की। अब आप 200 या इससे पहले भी कौंसलेट बिलाल पाशा साहब ने अपने इंडिपेंडेंट तौर पर किया था, बिलाल पाशा ने उन्होंने भी 200 फैमिली का पहले भी किया था ऐसे मुखीर हजरात मिलके। अब भी उन्होंने दोबारा किया, एक 10 दिन के अंदर दोबारा किया प्रोग्राम, जैसे भी उन लोगों को राशन प्रोवाइड किया गया। लेकिन बेसिक सवाल मेरा अभी भी उधर ही है कि अब 600 फैमिली उधर रहश पजीर है इधर। अब आपको पता है लॉकडाउन के वैसे घरों के अंदर वो भी बैठे हुए हैं, अब 25 से 30 हजार इलीगल इमिग्रेंट वो भी घरों के अंदर बैठे हुए हैं। अब आप सबको इन 200-400 डब्बों से वो तो आप नहीं मतलब वो प्रोवाइड चीजें कर सकते, ये तो इनकी अपनी कोशिश थी। इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए था इसको अपना किरदार रोल अदा करते जो उन्होंने अभी तक नहीं किया। लेकिन लेकिन उधर से कोई बाज़ाब्ता ऐसी कोई चीज अभी तक सामने नहीं आई जो हम बता सके कि हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज। अभी बैतुल सलाम ने जो ये फाउंडेशन है, ये जो तुर्की की जो एक और तुर्क जिलाई के नाम से है ये एक अदारा, इन्होंने मिलकर जितने भी स्टूडेंट थे उनको बोला था कि आप हमें अपने स्टूडेंट कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी वाले हमें ईमेल करें, हम जिस हद तक होता है हम उनकी मुमकिन मदद करते हैं, उनको राशन भी देते हैं और उनको माली मामले भी करते हैं जो मुस्तक अफराद है उनके लिए उन्होंने बोला था। और ये भी बड़ा अच्छा किदार, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी बात ये रहा कि जो लोग इधर स्ट्रेंडेड पैसेंजर थे वो भी स्टक होकर रह गए हैं। इससे पहले भी कौंसुलेट में 194 करीब जो स्ट्रेंडेड पैसेंजर वो पाकिस्तान भेजे थे वो टोटली वो फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट के रहमो करम पर गए थे, वो उन्होंने कोई टिकट के पैसे वगैरह चार्ज नहीं किए थे। लेकिन जो अब नए लोग हैं वो तकरीबन 600-700 अफराद हैं जो फिर दोबारा पाकिस्तान जाने के लिए रेडी है। वो पाकिस्तान जाना चाहे उसके अंदर स्टूडेंट तबका भी है, फिर उसके अंदर वो भी है जो टूरिस्ट वीजे के ऊपर आए थे। अब वो आपको पता है कि उनके वीजे भी खाली वो एक्सपायर हो गए हैं, उनको बड़ी परेशानी, वो इंडिपेंडेंट खुद अपना सर्फ वगैरह कर रहे हैं, खाना वगैरह जो भी अपना अकोमोडेशन का वो साथ खुद ही कर रहे हैं फीस। अब वो भी बड़े परेशान बैठे हैं, वो भी स्टक है, उसके लिए भी खसूसी फ्लाइट का अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया। मैंने पीछे अपना पाकिस्तानी कौंसल से रब्ता भी किया था तो उन्होंने बताया था कि हम ईमेल भी कर रहे हैं सिविल एविएशन वालों को, बकायदा ये फोन कॉल भी किए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा प्रॉपर सिग्नल नहीं मिला कि हम खसूसी फ्लाइट का अरेंज कर रहे हैं। सारी बात लोगों के पास वो जराए अंदर वो भी खत्म हो रहे हैं, कारोबार है कोई नहीं इधर, जो जिनके अपने रेस्टोरेंट है वो बंद पड़े हुए हैं। अब जो जॉब जॉब करते थे वो भी घर में जॉबलेस है, वो घर में बैठे हुए हैं, यही बात है, हर चीज बंद है इधर। तो जो भी करना ये तो कोई तुर्किश गवर्नमेंट तो नहीं कि उनको हर बंदे को घर में जाके हमारे फॉरनर को राशन वगैरह प्रोवाइड करेगी मुहैया करेगी, वो तो जाहिर बात है सबसे पहले बेसिकली अपने लोगों को देखेंगे। सूर्या के लोग भी सीरिया के लोग भी इधर बैठे हैं, वो भी आपको पता है इनके रामो कर्म के ऊपर है। अब जाहिर बात है ये भी उनको भी देख रहे हैं किसी हद तक, जो भी मामले जाहिर बात है उनको संभाल रहे हैं। अब उसमें पाकिस्तानी लोगों का भी बड़ा किरदार है, इसमें जो महीर हजरात उनको भी तावन करना चाहिए, लेकिन वो चीजें सामने भी नजर नहीं आ रही।
बेहद शुक्रिया आतिफ शिराज भट्ट, आप तुर्की में 92 न्यूज के नुमाइंदे हैं और आपने बड़ी तफसील से हमें बताया कि तुर्की में इस वक्त पाकिस्तानी की सूरत हाल में है और उनके लिए हुकूमत या पाकिस्तानी सफारत खाना क्या कुछ कर रहा है। बेहद शुक्रिया। ये थे तुर्की में 92 न्यूज चैनल के सहाफी आतिफ हिराज भट्ट। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका की खसूसी नशरियात में आज के प्रोग्राम से यास्मीन जमील आपसे इजाजत चाहती है। अल्लाह हाफिज़।